ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छी बात है कि आप सब यहाँ तपस्या कर रहे हैं और कितने परम सौभाग्य की आप सबके लिए हर्ष की बात कहेंगे। इतना सौभाग्य है कि प्यारे ब्रह्मा बाप की चरित्र भूमि, कर्म भूमि, जहाँ चारों ओर तपस्या के वाइब्रेशंस हैं, शक्तिशाली वाइब्रेशंस हैं, वहाँ आप बैठे हैं समय निकालकर फ्री माइंड से अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। ऐसा ही कहे ना? हाँ जी, सबकी। और अब तो आपने दो तीन दिन में बहुत कुछ ग्रहण भी कर लिया होगा। क्या अनुभव कहता है कि खूब पाया, पाया, खूब पाया? तो आज फिर अंतिम समय की बात करते हैं। तो पुरुषार्थ का तो अंतिम नहीं है, बट्टी का भी अंतिम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, बाप दादा का जो इशारा हम सबको मिला है कि अब समय को देखो, और हम सब ये महसूस करते हैं कि अब समय बहुत कम है। कम क्या, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी, और ये थोड़ी भी समझ लो बहुत अनमोल घड़ियां हैं जिसमें हम खुद को अब जितना चमकाना चाहे, बनाना चाहे नहीं कहेंगे। बनाने का काम तो आप बहुत समय से कर रहे हो स्वयं को, कि बाबा जैसा बनना है, फरिश्ता बनना है। सबको कितने कितने वर्ष हो गए होंगे, ऐसे ही ना हरीश बहन? चाहे 2 वर्ष भी हुए हो, मैं कहती हूँ, चाहे 20 हुए हो या 40 हुए हो, कितने भी हुए हो, मिला ना टाइम, मिला ना, फिर भी भाग्यशाली हो ना। अब जो आएंगे उनको कहाँ मिलेगा? तो आपके लिए तो अब अपने को चमकाने का टाइम है। जब कोई चीज तैयार हो जाती है फिर उसकी पॉलिश वॉलिश होती है ना, हर एक चीज को देखो, हाँ, चाहे वो गोल्ड सिल्वर की हो, चाहे वो जूता कपड़ा ही क्यों ना हो, तो फिर उसको बहुत अच्छा सेट करते हैं, सबके आगे एक सैंपल बन जाता है वो। तो हम बाबा के बच्चों को भी अभी इस अंतिम समय में स्वयं को ऐसा चमकाना है कि कहीं से कोई भी कसर ना रह जाए। जैसे कोई सैंपल तैयार हो जाता है तो उसको इस ढंग से पेश किया जाता है कि कहीं कोई भी कोई कह ना सके, देखो फलां जगह ये दाग दिख रहा है, या ये कुछ सलवट दिख रही है, या क्रैश दिख रहा है, कुछ नहीं। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को एक संपूर्णता का लक्ष्य दिया है। देवी देवताओं की भी जो डिग्री है वो सर्वगुण संपन्न की है, संपूर्ण निर्विकारी की है, और उसकी तैयारी कब है? अब है, सतयुग में नहीं। यहां से ही हम वो डिग्री लेकर के ही जाएंगे, बस वो डिग्री लेने की देरी है। पढ़ाई में भी देखो, जब सारा वर्ष एक स्टूडेंट पढ़ता रहता है, तिमाही पेपर, छिमाही पेपर बीच में देता रहता है, तो उसके मार्क्स जुड़ते रहते हैं। उससे उसको आइडिया भी लगता रहता है, टीचर को भी आइडिया लगता रहता है कि मेरी जो पुरुषार्थ की या पढ़ाई की स्पीड है वो कैसी है, और मुझे अभी और कितना एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। और जब लास्ट फाइनल एग्जाम होता है तो फिर उसको उस समय बस एक ही धुन होती है, मुझे इसमें 100% पास विद ऑनर होकर के निकलना है। तो अब जबकि हम अंतिम समय की बात करते हैं तो इसका भी यही ही मतलब है कि अब हमारे पास वही टाइम आकर पहुंचा है कि हम अब ये नहीं सोचें कि कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, कोशिश है। अब हमारी भाषा से, हमारे डिक्शनरी से, हमारी टोटल पुरुषार्थ से ये निकल जाना चाहिए। सबसे पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और बाबा को भी ये बात अच्छी नहीं लगती कभी भी। आप मुरलियों की स्टडी तो करते ही रहते होंगे, पुरानों ने तो कई बार डायरेक्ट भी सुनी होगी, और पीछे की आप पढ़ो भी, मुरलियां पढ़नी ही चाहिए। हाँ, स्टडी का जिसको शौक होता है वो पढ़ता ही है। तो कई बार बाप दादा ने अव्यक्त रूप से भी कहा है, और साकार में भी बाबा कहते थे, बाबा को गे गे करना अच्छा नहीं लगता है। अक्सर बातों में हम क्या करते हैं, पूछो अपने से, हम क्या करते हैं। नीचे जो बत्ती चल रही है ना टीचर्स की, उसमें विशेष लक्ष्य इस बार स्व निरीक्षण का रखा है कि हम अंदर स्वयं को देखें, झांके, मैं प्रैक्टिकल में कितनी हूं। ज्ञान तो सबको अच्छी तरह से है, और ज्ञान का मटेरियल भी किसी के पास कम नहीं है। है कम? किसके पास कम हो तो हाथ खड़ा करो। अभी अभी एक मिनट में ढेर आ जाएगा, क्लिक करो। हमको तो भाई बहन ऐसी ऐसी सुनाते हैं, हमें ही नहीं पता होता। कई बार कहते ये क्लास भी आया, ये क्लास भी आया, प्लाना भी करा रहा है, वो मैटर भी आया, ये मैटर भी आया है। क्या ढेर खजाना है आप सबके पास, ढेर खजाना। सुनने लगो तो भी खत्म नहीं हो, लिखने का तो सवाल ही नहीं, अब जरूरत भी नहीं रहती, फिर भी लिखना अच्छा है। लेकिन क्या सचमुच मैं अपने अंदर खुद को चेक करूं? अंतिम माना मैं देखूं, अपना खुद का निरीक्षण करूं कि मैंने अब अपने इस पुरुषार्थी जीवन से गे गे निकाला। अगर गे है, करूंगा, देखूंगा, वो कब कब होगा? वो कौन सा टाइम? अब वो टाइम नहीं रहा। कभी कभी कोई कोई कहते हैं, जब दादियां समर्पित हुई थी, बट्टी बनी थी, शुरू के 14 वर्ष, तो पहले उसमें ही जब दादियां आई, शुरुआत में ही, तो बाबा ने कह दिया था अगली दिवाली नहीं आएगी। सुनी हुई है ये बात? किस किसने सुनी हुई है? अभी सुनी है, बट्टी में ही सुनी है। पहले भी सुनी होगी, फिर भी कईयों ने लगता है जैसे नहीं सुनी है। अभी तो सुनी, चलो समझ गए ना। तो बाबा ने कहा अगली दिवाली नहीं आएगी, और सब एकदम कि जो करना अभी करना है। स्वयं बाबा ने भी सब कुछ समेट लिया, दादियां भी, छोटी आयु थी उस समय। नहीं तो छोटी आयु वाले को कहते हैं, अभी तुम कुछ समझ ले, कुछ सीख ले, कुछ खा ले, कुछ मौज कर ले, फिर भगवान का बनना। आज भी कहते हैं ऐसे, देखो, जबकि दुनिया इतनी गंदी हो चुकी है अभी तो। लेकिन कुछ नहीं देखा दुनिया का, कुछ नहीं, बस भगवान मिला, अब कुछ नहीं। अब दिवाली तो और आ गई, और आ गई, और आ गई, कितनी आ गई। लेकिन ये ख्याल नहीं आया कि ये क्या, बाबा ने तो कहा था अगली दिवाली नहीं आएगी, ये तो अब चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, आखिर भी अंत कब होगा, ये ख्याल नहीं आया। क्या ख्याल आया कि ये जो मुझे टाइम मिला है मुझे अपने को कंप्लीट करना है। तो जिसको लगन होती है ना वो हर समय ये बुद्धि में रखकर चलता है। अब तो वैसे ही अंतिम समय आ चुका है, अब उस अंतिम में भी हमें जो भी थोड़ा टाइम मिल रहा है तो अंदर ये लगन रहे। इसलिए हमने ये बात सुनाई, देखो उस समय शुरुआत थी, समय था, तब भी दादियों को ये निश्चय 100% हो गया कि अगली दिवाली नहीं आएगी, और आई तो भी ये नहीं सोचा कि ये तो ऐसे आती रहेगी, नहीं। अच्छा है ये टाइम मिला मुझे अपने पुरुषार्थ को और आगे और तीव्र करना है। तो कहने का भावार्थ ये है कि अब तो आ ही गया अंत, अब तो हमें अपना ये सौभाग्य समझना चाहिए कि मैं उससे पहले ही कमाई करना मैंने शुरू कर दी, कम से कम टू लेट तो नहीं हुई हा? और आपको तो काफी कईयों को बहुत टाइम मिला है, पर अब जो ये थोड़ा भी टाइम हमें मिल रहा है हमें इसमें अपने आप को कितना ध्यान देना जरूरी होगा। और ये तो आप सबको मालूम ही है कि प्यारी मम्मा का तो स्लोगन ही यही था, शिक्षा ही यही थी, कौन सी, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। क्योंकि चाहे संगम युग भी चलता रहे, मेरा अगर आज अंत होता है तो पुरुषार्थ का समय तो यही है ना। इस रूहानी ईश्वरीय जन्म में ही मुझे अपने आप को तैयार करना है ना, फिर कब करेंगे, है ना। और अब तो दुनिया के हालात भी बिगड़ चुके हैं, अब तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि ऐसे ही चलते रहे तो बहुत समय संसार नहीं चल सकता। हाँ वो डिटेल तो मैं क्यों सुनाऊं आपको, उन्होंने तो वर्षों से, हवा से, पानी से, जनसंख्या से, सब बातों से, लेकिन उन बिचारों को ये मालूम नहीं कि इसके बाद क्या होगा। और हम कितने लकी हैं कि हमें ये मालूम है कि इसके बाद क्या होगा, कि एक ऐसा संसार है हाँ सुखमय जिसमें हम सब राज्य करेंगे, जहां एक मत एक राज्य एक भाषा होगी। तो मैं इस अंत में अब ये सोचूं कि मैं उस राज्य में प्रवेश करने वाली और राज्य पद पाने वाली आत्मा कितनी तैयार हुई हूं, कितनी गोल्डन बनी हूं, है ना, मेरी आत्मा कितनी चमकी। और बाबा कहते हैं बच्चे जब आप परम धाम से आए थे नीचे, पाठ बजाना शुरू किया था, उस आदि में आप कैसे थे, सतो प्रधान थे, और अब कैसे हो गए, अब मेरे बने हो तो मैं फिर से आपको उस तमो प्रधानता से निकाल कर सतो प्रधानता तक ला रहा हूं। तो मेरे को ये देखना है कि अब वो टाइम आ गया कि मैं अब तमो प्रधानता से तो निकल आई, रजो में आ गई, रजो से भी निकल आई, ऐसा समझना चाहिए। यही आपको देखना अपने अंदर, हाँ, अंतिम समय की बात है ना। तो मैं सतो में आ गई और आना मुझे कहाँ है, सतो प्रधानता में, ये तैयारी है। तो क्या मैं सचमुच सतो प्रधानता की ओर हूं, और वो भी 100%, सिर्फ सतो तक नहीं रहना। हाँ सिर्फ सतो तक रहेंगे तो सतयुग का राज्य कैसे पाएंगे, फिर तो बाद का राज्य मिलेगा, रजो की तो बात ही नहीं बनती, आप तो सूर्यवंशी आत्माएं हैं। तो ये अंतिम समय में मुझे अपनी सतो प्रधान अवस्था बनानी है, आत्मा को उस स्टेज तक लाना होगा। और उस स्टेज तक लाने के लिए मेरी आत्मा कितनी 100% गोल्डन प्योर एकदम चमक जानी चाहिए, तो उसके लिए वैसा मेरा पुरुषार्थ चाहिए। भले अब ये तो आपकी अवस्था बन गई कि ये दुनिया से हमारा कोई वास्ता नहीं, अब सिर्फ हम वहां पार्ट प्ले कर रहे हैं, ड्यूटी प्ले कर रहे हैं, कोई लगाव या झुकाव नहीं है। अब वो बातें बचपन की लगती हैं, या अभी भी ऐसे लगता है मेरी बड़ी अटैचमेंट है, मेरी अटैचमेंट छूटना बड़ा मुश्किल है। तो फिर आप हिसाब लगाओ कि टाइम थोड़ा है और अटैचमेंट भी अभी गई नहीं, तो मुझे अपनी कितनी स्पीड पकड़नी पड़ेगी, चाहे वो अटैचमेंट कहीं ही हो, कहीं भी। सबकी एक जैसी नहीं होती है, कोई कहते अरे क्या अब ये देह के संबंधियों में मोह ममता रखी है, ये तो सब स्वार्थी दुनिया है, लेकिन उसकी कहीं और हो सकती है, संबंधों में नहीं हो, संबंधों से अनुभव अच्छे नहीं है, कड़वे हैं, स्वार्थ की दुनिया है, धोखे की दुनिया है, समझ लिया, दिल खट्टा हो गया, अपना भी पराया लगता है, तो मोह निकल गया। लेकिन सिर्फ एक ही चीज नहीं, कहीं और तो नहीं अटक गया। गुलजार दादी बड़ा अच्छा बताती थी, कहती संबंधों से तो छूट गया, चलो देह से छूटा, अपनी देह से छूटा, अपनी देह का कितना ख्याल रहता है हमको, कितना ख्याल रहता है, मरने का भी कितना डर लगता है, है? डर लगता है। भले हम कहते हैं नहीं ये तो मरना तो है ही एक दिन, लेकिन मैं मरने लगूं तो मेरी बुद्धि कहीं नहीं जाए, बाबा में जाए, मुझे भय नहीं लगे, मैं इतनी निर्भय आत्मा बन जाऊं। मैं सबकी बात कर रही हूं, अपने सहित बात कर रही हूं, हमें खुद को पूछना है ना, निरीक्षण करना है ना अपना, कि मैं उससे इतनी मुक्त हुई हूं आत्मा। जो बाबा कहते हैं बस जैसे वस्त्र उतारते हैं मैं ऐसे सहज न्यारी हो जाऊं। और मुझे ये पूरा 100% कॉन्फिडेंस हो कि मैं किसी भी परिस्थिति में शरीर छोड़ू मुझे बाबा याद आएगा और कुछ याद नहीं आएगा, ये पक्की बात है। मैं खुद को देखूं, तैयारी है ना मेरी ये, और तैयारी यही है कि अब मुझे वापस घर जाना है, अंतिम समय है। जब भी कोई जर्नी पूरी होने वाली होती है, लौकिक में भी आप देखो, अब आपकी बट्टी का भी आज लास्ट डे है, तो बुद्धि में आना शुरू हो गया होगा, अब कल दिल्ली की टिकट है या परसों दिल्ली की टिकट है, अब मेरी ड्रेसेस भी पूरी हो गई हैं सारी, जितनी रख के लाते हैं ना वो भी मैं, हम भी क्योंकि अनुभव है हिसाब रखते हैं, अब कल का एक दिन है, एक ड्रेस बचा के रखो, फिर पूरी हो जाएगी, सब मैली हो जाएंगी, वहां जाके दिल्ली में धोएंगे, तो उसी ढंग की पैकिंग शुरू हो जाती है, दिमाग वैसे ही चलने लगता है ऑटोमेटिकली। दवाई भी होगी, कहेंगे अब लास्ट पत्ता है, अब तो वहां जाके खरीदेंगे। कैसे देखो माइंड जो है सारी बातों को पैकअप करने लगता है। तो मेरी ये जीवन का, रूहानी जीवन की यात्रा, इस सारे मृत्यु लोक का ये जो रोल, ये वाला चक्र है 5000 का, ये पूरा हो रहा है और मेरी रिटर्न जर्नी है, मैं वापिस जा रही हूं आत्मा, अंतिम समय है। तो क्या सचमुच मेरी वैसी ही पैकिंग हो रही है, मैं समेट रही हूं सब कुछ, या मेरी बुद्धि बिखरी पड़ी है जगह 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 जगह। और हम देखो आरंभ में ही एक नए विद्यार्थी को भी ये पक्का कराते हैं कि राजयोग से समेटने की शक्ति आती है, है ना। अब बुद्धि को बिखेरो नहीं, जगह जगह फंसाओ नहीं, कहते हैं ना ऐसे, हाँ, जगह जगह फंसाओ नहीं। कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो जाए तो बुद्धि वहीं फंस जाएगी, लटक जाएंगे, अटक जाएंगे। और अंत समय अगर वही चीज याद आई, कोई भी व्यक्ति याद आया, तो अंत मति सो गति कैसे होगी? तो सबसे पहला मुख्य मूल पुरुषार्थ तो यही चाहिए कि हमारी बुद्धि निकली सब तरफ से। अगर बुद्धि नहीं निकली तो फिर लास्ट में वही चीज याद आएगी। एक पुराना, बहुत पुराना मिसाल मैं सुनाती हूँ, प्रैक्टिकल घटना है, हमारे, हमने नहीं देखी, हमने दादी के ही मुख से सुनी, इसलिए आपको सुनाती हूँ। तो दादी ने सुनाया, गुलजार दादी ने, कि एक माता थी, पुरानी बात है, वो शरीर छोड़ गई, वो तो पंजाब की माता थी, तो काफी पुरानी, पक्की, निश्चय बुद्धि, बहुत अच्छी, त्याग मूर्त, पढ़ाई में रख, सारी बातें ठीक, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, लेकिन कोई ना कोई हमारे पुराने संस्कार या कोई इच्छा दबी हुई होती है ना, तो वो बीमार हुई थोड़ी, उसका चलता रहा सब ट्रीटमेंट, घर वाले भी ध्यान देते रहे। तो अब जैसे लास्ट उसकी स्टेज थी, तो बहने सेंटर से उसके पास हॉस्पिटल में मिलने गई और उससे पूछा, सब कैसे है? तो कहा, तुम्हारी कोई दिल हो, कुछ हो, कुछ खाना हो, कुछ कहना हो, हा? कुछ कहा क्या? नहीं, तो बताओ। हाँ, बहनों ने जैसे अपनी रीति से उसकी दिल ली। उसने कहा, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब ठीक है। कहीं उसकी कोई इच्छा नहीं थी। तो बहनों ने कहा, अच्छा कुछ खाओ तो हम सेंटर से बना के ले आया कुछ। तो कहा, नहीं वैसे कुछ नहीं, अगर बहुत टाइम हो गया, अगर गोलगप्पे थोड़े हो सके दो चार तो मैं खा सकती हूँ। तो बहने उस समय अब ऐसी हालत में बेड पे पड़ी है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। अब आप सोचो, हाँ, तो आता है ना ख्याल, अगर इसी बीच में ही उसको बनने में भी टाइम लग सकता है, कोई अभी तो नहीं कोई बाहर रेडी से लेके आ जाएंगे, सोचने की बात है ना, कितनी छोटी सी चीज है ना ये। हाँ, शायद वो ठीक हालत में होती तो कहती भी नहीं ये बात, कहती भी नहीं। तो बहनों ने सोचा, अगर इसके आस रह गई तो अच्छा नहीं होगा। ये कितनी सिंपल सी बात है लेकिन कितनी गहरी बात है, क्योंकि हमारा कोई भी दबा हुआ संस्कार, कोई भी इच्छा, कोई भी हमारी इंद्रियों पर जीत नहीं है, वो कहां कभी भी प्रकट हो सकता है। बाबा ने हमें पुरुषार्थ कोई मोटा मोटा ऊपर ऊपर का नहीं दिया कि मैं बहुत सेवा करती हूं मैं खुश हो जाऊं, बस मैं तो सेवा, मेरी तो धूम मची हुई है, लेकिन मैं अंदर से कितनी अपने आप को बाबा जैसा कहता है वैसा मैंने बनाया है, या मैं बहुत योगन हूं, मैं तो बड़ा टाइम पे योग करती हूँ, करता हूँ, मेरा चार्ट तो बहुत अच्छा रहता है सारी क्लास में से, मैं तो रेगुलर मुरली सुनता हूँ, कभी मिस नहीं करता हूँ। ये सब राइट है, जरूरी है, इसके मार्क्स हैं, नो डाउट, परंतु अब मेरी चलने की तैयारी है, लास्ट है, अब मुझे सब कुछ कंप्लीट करना है। कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। तो ये मेरे को अपनी चेकिंग करनी होगी कि बाद में मुझे अफसोस नहीं हो कि मैं ये कर सकता था और मैंने किया नहीं। आज फिर भी मेरे पास वो घड़ी है कि मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं या नहीं, हाँ आपके हाथ में है ना, ऐसे थोड़ा आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि ज्ञानी बैठे हो, सब योगी बैठे हो। ज्ञानी माने समझदार, जो आदि मध्य अंत को समझता है। त्रिकालदर्शी बाबा ने आप सबको बना दिया है। अच्छा, अगर आज समझदार होते हुए भी मैं अपने को मजबूर समझती हूं तो फिर कब? क्या आगे मजबूरियां बढ़ेंगी या घटेंगी, बताओ? बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। हालात भी साथ नहीं देंगे, क्या पता कल कर्फ्यू लग जाए। आज मैं सोचती हूँ मैं मुरली रोज नहीं कर सकती हूँ, मेरा कारोबार ऐसा है, मेरी गृहस्थी की परिस्थिति ऐसी है, अब थोड़े दिन बाद मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, फिर मैं रोज सुबह क्लास करूंगा, थोड़े दिन बाद मेरी बहू आ जाएगी वो घर संभाल लेगी, फिर मैं दीदी को कहूंगी मैं सारा दिन सेवा कर सकती हूँ। लेकिन कल क्या होगा आपको गारंटी है? वो बहू रानी कह देती है मैं तो सुबह उठती नहीं हूँ, मम्मा मैं तो उठती नहीं हूँ, आप पहले तो इसकी चाय बनाती थी, अब मेरी भी ले आना साथ। होता है ऐसे, मैंने कितनों को देखा है ऐसे, कितने मिसाल देखे हैं ऐसे, अनुभव से बता रही हूँ। आके रोती है माता, कहती मेरी तो आशाओं पे पानी फिर गया, मैं तो सोची थी अब फ्री होने वाली हूँ, मैं तो और फंस गई। मैं पहले तो बेटे की बनाती थी, उसको तो फिर भी कह देती थी थोड़ा जल्दी पी ले, इसको तो ये भी नहीं कह सकती हूँ मुझे क्लास में जाना है। तो आगे मजबूरियां परिस्थितियां क्या कहेंगी? जब इंदिरा गांधी के रॉयट्स हुए थे कर्फ्यू लगा था ना, मालूम है ना, कईयों को मालूम होगा, हाँ थोड़े दिन का ही अनुभव किया था ना, वो तो जरा सा ट्रेलर था छोटा सा, बड़ी पुरानी बात हो गई है। पर अभी आगे क्या होंगी ये परिस्थितियां, सब ऐसी बन जाएंगी। धन का भी भरोसा नहीं है, वो भी आप देख रहे हो, वो भी एक्सपीरियंस कर लिया ना इन 3-4 साल में, और आगे क्या क्या लॉज बन जाए कुछ कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो बाबा के इशारे हमें मिलते हैं, हमें बाबा के इशारों को पकड़ना है। ऐसे ही नहीं समझ लिया बस, सुन लिया बस, उस समय बड़ा अच्छा लगता है हमको, हम हाथ खड़ा करते हैं बड़े उससे ना, हाँ बाबा ऐसा हम करेंगे, फिर वही गे आ जाता है। लेकिन वो मुझे अब भी करना है। तो क्या सचमुच मुझे ये दुनिया ऐसी दिखती है, इतना मेरा उससे डिटैचमेंट हो गया? फिर हमारे कर्मों के हिसाब किताब भी कई रहे हुए हैं, वो हमारे सामने आते हैं भिन्न भिन्न रूप से, तन के रूप से, मन के रूप से, धन के रूप से, संबंधों के रूप से, अभी भी आते हैं। वो कब फिनिश होंगे, कब करेंगे? बचा हुआ खाता तो साथ ले नहीं जाना, अगर बचा हुआ खाता साथ ले जाएंगे तो धर्मराज की जगह चुकतू करना पड़ेगा, और वो हमको करना नहीं, करना है क्या किसका प्रोग्राम हो बाद में करने का? हाँ नहीं, ये तैयारी भी अभी चाहिए। जैसे देखो किसी की उधार सिर पर हो, है ना, तो बाबा ने आपको ये कमाई का टाइम दिया है, बाबा उस बोझ से आपको मुक्त करने आया है, और ये संगम युग इतनी कमाई का युग है, इतनी कमाई का युग है कि आप जितना कमाना चाहो, जिसमें आप पिछला भी उतार सकते हो, वर्तमान में भी मौज कर सकते हो, और भविष्य भी जमा कर सकते हो। तो कमाई चेक करो अपनी, ये भी तैयारी है। जैसे कोई कोई उधार हो, समझदार क्या करता है, पार्ट टाइम जॉब करके भी, दुकान को एक्स्ट्रा टाइम खोल के भी, कहीं ना कहीं से बचत करके भी सोचता ये उतार दूं, मेरे मरने के बाद अगर कोई मांगने आया तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी। तो हम मरने के बाद धर्मराज हमसे पूछे तो वो तो इज्जत की बात नहीं रहेगी ना। अभी उतारना गौरव की बात है, क्योंकि अभी वही उतार सकते हैं जो कमाई ज्यादा करेगा, और कमाई ही करने के लिए बाबा ने हमको इस समय ये समय दिया है कि जितनी करना चाहो कर सकते हो। ऐसे नहीं सिर्फ दिल को खुशी करते रहे, हाँ मैं भाग्यशाली हूं, मुझे टाइम मिला है, मुझे दादियों का दीदियों का प्यार भी मिलता है, ये भी है, हाँ फिर मैं ये कर भी लेता हूं, इतने से सिर्फ खुश नहीं करना अपने आप को। तो रियल में मेरा ऐसा पुरुषार्थ रहे कि सचमुच मैं आत्मा स्वयं से संतुष्ट हो जाऊं, कि मैं पिछले हिसाब किताब को भी चुकतू कर रही हूं, मेरा खाता इस समय इतना अच्छा है कि वर्तमान में भी मेरी अवस्था अच्छी है, किसी परिस्थिति में मैं हलचल में आने वाली आत्मा नहीं हूं, कुछ भी हो जाए और भविष्य भी मेरा इतना रूहानी खाता जमा हो रहा है हर लिहाज से, योग बल से भी, ज्ञान बल से भी, सेवाओं के पुण्य से भी, जो भविष्य मेरा ऊंचा होगा, ये भी अभी चाहिए, तो मैं आत्मा हल्की हो जाऊंगी। ऐसे हमको डबल लाइट होकर के यहां से जाना है। तो उस रीति से मेरी कमाई हो, वो हिसाब देखो। तो हमारे चारों सब्जेक्ट बाबा ने दिए ही जमा के लिए हैं। इतना मेरा जमा हो सकता है इस पर आपकी क्लास भी हुई हो, जमा का खाता कैसे बनाएं, आगे पीछे भी सुनेंगे। मुरलियों में भी बाबा ने कई बातें इस पर बहुत अच्छी सुनाई हैं। सिर्फ बाहरी ख्यालात से नहीं खुश होते रहना है कि हाँ हमने कोई पॉजिटिव थॉट कर लिया, हर बुराई से अच्छाई निकाल ली, ये भी तो ब्राह्मणों के अंदर कला है ना। अब मान लीजिए मैं पुरुषार्थ मेरा है नहीं, लेकिन मैं सोचती नहीं औरों से तो अच्छा ही है, मन को मैंने बहला लिया, लेकिन मैं नंबर वन बनना चाहती हूँ, महारथी हो सब, तो मैं एक साधारण पुरुषार्थी से कंपैरिजन करके सोचूं, नहीं मेरा अच्छा ही तो है, वो तो मुरली भी नहीं सुनता, मैं मुरली तो सुनती हूँ, वो तो कुछ भी सेवा नहीं करता, मैं थोड़ी कर तो लेती हूँ, ऐसे बहला के खुश नहीं करना अपने आप को, क्योंकि अब फिर मौका कम मिलेगा, अब भी अंतिम टाइम है। एक हंसी की बात सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक सेठ था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति दान करने की नहीं थी, सबको मालूम था। तो क्या हुआ, अचानक बाढ़ आ गई और उसके कई खेत थे, बहुत, और भी कई कारोबार थी, लेकिन फार्म हाउस खेत वगैरह भी बहुत थे। अब जब बाढ़ आई तो जो वो खेत थे पानी भर गया, तो खरबूजे के खेत थे, खरबूजे बहने लग गए सारे। अब वो देख के उसका तो जी घबरा गया एकदम कि ये क्या हुआ, मेरा तो लॉस में चला जाऊंगा, सारे खरबूजे बहते जा रहे हैं। तो उसको हार्ट पेन शुरू हो गया उसी समय ही, और एकदम जैसे हार्ट फेल होने की हालत हो जाती है ना, तो सब वो डॉक्टर्स वैद्य वगैरह आ गए, घर वाले इकट्ठे हो गए सारे कि सेठ जी को क्या हो गया, क्या हो गया। तो अब वो इंजेक्शन भी लग रहा है लेकिन उसकी हालत सुधर नहीं रही। तो इतने में उसका कोई नजदीकी संपर्क वाला था, वो उसको अच्छी तरह से जानता था कि इसकी प्रवृत्ति कैसी है। तो उसको मालूम था इसने आज तक अपने हाथ से कुछ किया ही नहीं है। तो आया, तो आके जब सारे देख रहे थे, कोई रो रहा है, कोई इंजेक्शन लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और सेठ जी बार बार बोले जाए, हाय मेरा खेत बह गया, खरबूजे बह गए, हाय बह गए, अब क्या होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी वो बह नहीं रहे, वो आपका खरबूजा फलाने परदादा के नाम गया, फलाना खरबूजा दादा के नाम गया, फलाने खरबूजे का खेत पंडित के नाम गया। उसको थोड़ी सांस आने लगी, फिर थोड़ा धैर्य उड़े लगा कि वेस्ट नहीं गए, अब वो गया परदादा के नाम, हाँ पुण्य में लग गया वो दादा के नाम लग गया। एक्चुअली तो वो बह ही गए थे, कोई पुण्य लगा नहीं था उसको, पर सेठ जी को थोड़ी आथत मिली, समझ रहे हो ना बात को। तो आथत मिलने से उसकी सांस लौट के आने लग गई और वो जो पेन था उसका वो कम होता चला गया। तो इसको क्या कहेंगे, खुद ही सोच लो। हाँ, तो वो कोई उसका जमा नहीं हुआ, कोई पुण्य उसको लगा नहीं। वो तो व्यक्ति होशियार था जो उसने उसकी मानसिक वृत्ति को चेंज कर दिया। तो बाबा के हम बच्चे तो आदि मध्य अंत जानते हैं, समझते हैं, तो हमको उस रीति से अपना अकाउंट बनाना है, ठीक रखना है। और आगे प्रकृति भी साथ नहीं देगी, एक तो हमारी आत्मा के पिछले जन्मों के खाते हैं ही, लेकिन साथ साथ ये जो वायुमंडल है पांच तत्वों का, ये भी कैसा हो जाएगा, हो ही रहा है ना अभी। अचानक रोग आ जाता है, अच्छा भला आदमी ठीक ठाक बैठा बिठाया, प्लानिंग उसकी कुछ हुई हुई है और अचानक हार्ट अटैक हो जाता है, अचानक कोई दूसरा रोग आ जाता है, और आगे तो और आने हैं। हम ये तो नहीं कह सकते, हम ये तो ठीक है, हम योगी हैं, हमें क्यों आएगा, लेकिन हमारा कोई भी, हमें नहीं आएगा, किसी और को भी आएगा, मैं तब भी तो फंस सकती हूँ ना, परिवार में भी किसी को आएगा तो भी आपका तन मन धन समय एनर्जी जाएगा या नहीं जाएगा। हाँ, साइंस ने तो कह दिया ग्रीन हाउस भी इफेक्ट होगा, सांस लेने के लिए भी मुश्किल होगी, पानी भी शुद्ध नहीं मिलेगा, ये तो होता ही जा रहा है ना सब। तो हमको इन सब बातों से अपने आप को डिटैच करना है और आत्मा को बहुत शक्तिशाली बनाना है, बहुत शक्तिशाली, सभी शक्तियों से अपने को भरपूर करना है। तो इसके लिए मैं सार में आपको तीन शब्द दूंगी कि विकर्मा जीत भी बनाओ, प्रकृति जीत भी बनाओ और कर्मातीत भी बनाओ। अब आप सोचेंगे तो बड़ी ऊंची कैसे बनेंगे, आप ही बन रहे हैं, ऐसे नहीं आप नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन इसमें कंप्लीट करना है अपने आप को, कंप्लीट करना है। क्यों, बाबा ने पुरुषार्थ ही हमें वही दिया है पहले दिन से, कोई कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे देखो ये देह भान से आपके भी कर्म हुए 63 जन्म, मैंने पहले दिन तुम्हें कहा तुम आत्मा हो। ब्रह्मा बाबा ने इतना अभ्यास किया अंदर ही अंदर, इतना अभ्यास जैसे छोटे बच्चे गोटा लगाते हैं ना ऐसे, हाँ मैं आत्मा हूं, हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखा, सुनी हुई है ये बातें आप सबकी। तो क्या मैंने अपने अंदर अपने आप को इतना घोटा लगाया मैं आत्मा हूं और जो भी है वो भी आत्मा है, नहीं तो देह के संबंधों से रग निकलेगी नहीं। आत्मिक दृष्टि से देखा ये मेरा बेटा आत्मा है, ये मेरी युगल आत्मा है, बेटी आत्मा है, यही रग खींचते हैं ना संबंध। तो इतनी मेरी आत्म अभिमानी स्थिति बने तो मैं विकर्मा जीत बनूं, राइट है। ऐसे प्रकृति जीत, मैं इसका विस्तार नहीं कर रही टाइम को देखते हुए, मैंने आपको संक्षेप में ये इशारा दिया है, अब प्रकृति जीत के लिए कई भाई बहने सोचते हैं तो बड़ा कठिन है ये, हम प्रकृति के ऊपर जीत, दादियों ने तो पाई, दादियों ने पाई तो आप भी पा सकते हो, ब्रह्मा बाबा मम्मा ने पाई ना, तो उसका ये सहज है कि मैं अपने आप को इन पांच तत्वों के इस वायुमंडल, इस साकार लोक से ऊपर होके बैठूं कि मैं परम धाम की वासी हूं। तो अब से ये देखना अपने आप को कि मैं कितना परम धाम की वासी होकर चलती हूं। जैसे देखो ऑफिस जाते हो ना, जाना है कुछ 24 घंटे घर कोई नहीं बैठता, लेकिन घर भूल जाते हो, भूल जाते हो, याद रहता है। ऐसे ही मैं इस धरती पर हूं, पार्ट प्ले कर रही हूं, जिसको भी जो पार्ट मिला है, लेकिन मेरा घर परम धाम है, वासी में वहां की हूं। ये याद रखो, ये अंतिम तैयारी है। मैं यहां की रहने वाली नहीं हूं, रहने वाली मैं घर की हूं। राइट है ये बात? हाँ, ऑफिस में बैठे होते हो कितनी बार घर याद आ जाता है, कहीं जर्नी पे जाते हो कितनी बार घर याद आ जाता है, स्थूल लौकिक घर। यहां भी 4 दिन इतनी तपस्या में भी कई बार आया होगा, मैं सच्ची बात बता रही हूं, फोन भी कर लिए होंगे। हाँ, यहां आके याद आया होगा, ओ पीछे का दरवाजा खुला तो नहीं रखा हुआ, बंद कर देना। यूज टू है ना, तो मैं परम धाम की यूज टू हूं कि मुझे याद ही नहीं आता मैं परम धाम में रहती हूं। तो मैं रहूं वहां, रहूं यहां रहते वहां रहूं, तो बीच बीच में 2 मिनट 5 मिनट वहां रहो परम धाम में, ठीक है, तो प्रकृति के ऊपर जीत पा सकते हैं। एक बार की मिसाल सुनाती हूं प्रैक्टिकल अनुभव की। मैं आ रही थी बहुत थोड़े काफी साल पहले की, जब राजधानी ट्रेन नहीं चल रही थी, आश्रम एक्सप्रेस थी, वो बीच रास्ते में बावल के आगे जंगल में रुक गई, बिल्कुल जंगल, और एसी कोच आपको पता है चारों तरफ से बंद होता है, हाँ, और अंधेरा होने वाला हो रहा था, इंजन खराब हो गया, तो सारे जो कैबिन के लोग थे वो नीचे चले गए सारे, और मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई बहन भी नहीं थी। अब मेरे को टच हुआ मुझे नीचे नहीं जाना, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, कई पुरुष तो चले गए, उनके साथ फीमेल्स थी वो भी चले गए, क्योंकि एकदम हवा बंद, एसी बंद, लाइट बंद, सब कुछ बंद, और खिड़कियां तो उसकी बंद ही होती है, तो सब नीचे। और वो इंजन 2 घंटे तक ठीक नहीं हुआ, दूसरा इंजन आए और सारे पूछते रहे कब आएगा कब आएगा, लोगों ने नीचे जाके अपना खाना पीना भी निकाल के नीचे जाके खड़े होके खाना शुरू कर दिया, आसपास वो होता है ना खुला जैसे, और हम अंदर। मुझे बिल्कुल ख्याल ना आए जरा भी कि मैं नीचे जाऊं, और मैं नहीं गई, और मैं अकेली अपने उस डब्बे में बैठी हूं, और हवा का जरा भी कहीं से कुछ मार्जन नहीं, गर्मी के दिन। तो जैसे थोड़ा शुरू में तो हलचल होती है, 10-15 मिनट जब रुकता है इंजन, अभी आ जाएगा अभी हो जाएगा, इन्हीं बातों में टाइम चला जाता है, फिर मुझे थॉट आया मैं रेल में नहीं हूं, मैं क्यों रेल में बैठी हूं, मैं ट्रेन में नहीं हूं। मैंने अपने को थॉट दिया, मैं सच्ची अनुभव की बात सुना रही हूं, और उसके बाद मेरे को इतना सीखने को मिला, जैसे बाबा ने मेरे को ही ये परिपक्व करने के लिए खेल रचा हो, मेरे को ऐसे अनुभव हुआ बाद में। तो मैंने कहा मैं ट्रेन में नहीं हूं, और एकदम अपने को थॉट देते ही कि मैं परम धाम में बैठी हूं, मैं हूं ही नहीं यहां, न ट्रेन है न खेत है न बावल है न जर्नी है, उनका मैं परम धाम में बैठी हूं बस, बिंदी आत्मा। उस थॉट को मैं कंटिन्यूस करती गई और मुझे थोड़ा जोर तो लगा, माना माइंड पे मुझे बार बार अपने थॉट को रखने के लिए। ऐसे तो हम पहले भी परम धाम में योग लगाते हैं, निराकार को याद करते हैं, लेकिन पसीना भी आए, सांस थोड़ी सांस भी भारी हो, तो मैं कहूं नहीं, मैं हूं ही बिंदी, शरीर है ही नहीं, मैं परम धाम में बैठी हूं, मेरा घर परम धाम है। तो टाइम बीत गया और जब इंजन आया, ट्रेन चली, यात्री ऊपर चढ़ने लगे, वो मेरे को देख के हैरान, एक एक बार बार मेरे से पूछे, बार बार मेरे, आप नीचे क्यों नहीं आई, आपको गर्मी नहीं लगी, आप समझ सकते हो कितने प्रश्न किए होंगे। तो बाद में मेरे को अपने आप से इतना सुकून मिला और इतना मुझे अंदर जैसे एक आथत आई, और बाबा तो ब्लेसिंग देता ही देता है, कि ऐसे ही खुद को मुझे परम धाम में रखना है। सिर्फ योग लगाना है बिंदुशी बाबा से वो परम धाम का वासी है, इतने तक नहीं, मुझे इन पांच तत्वों से डिटैच होना है, तो उस ब्रह्म तत्व में रहना है, क्योंकि परम धाम ब्रह्म तत्व है जो सदा एक जैसा है, अविनाशी, सर्दी गर्मी से पार है, हलचल से पार है, कोई मौसम नहीं है वहां, कोई ऑक्सीजन नहीं है वहां, मैं ब्रह्म तत्व में रहने वाली बिंदी आत्मा हूं। तो आपका ये एक्सपेरिमेंट आपको प्रकृति से विजयी बनाएगा, शरीर का दर्द भी आपको महसूस नहीं होगा। ये बहुत मैंने सूक्ष्म बात आपको पुरुषार्थ की सुनाई है, लेकिन ये करना, करने से होगा, एक्सप्लेनेशन को माइंड में रखने से नहीं। बीच बीच में आप सारे दिन में 5 मिनट, चाहे आप एयर कंडीशन में बैठे हैं, वो हालात तो सबके आगे थोड़ा आएंगे, जानबूझ के थोड़ा दरवाजा कमरा बंद करके लाइटें बंद करके बैठ जाओ, हाँ मैं पसीना आए फिर सोचूं परम धाम, ये जरूरत नहीं है, वो तो हमारे आगे हालात ऐसा आया ना। लेकिन अगर आप पहले से ऑलरेडी ये प्रैक्टिस करेंगे तो हालात के समय आप फेल नहीं होंगे, ये भाव है। आप कहीं बैठे हैं, आप स्टेशन पे बैठे हो, कितना मौके ऐसे आते हैं, हाँ हम खाली बैठे हैं, सोचो मैं परम धाम में बैठी हूं। आप भीड़ भाड़ में बैठे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप सोचो मैं परम धाम में बैठी हूं, मैं बिंदी हूं, बस उस ब्रह्म तत्व में बैठी हूं मैं। सन्यासियों ने तो किया ना, ब्रह्म तत्व में लीन हो गए, लीन तो कोई होता ही नहीं, वो तो तत्व है, आप तो चेतन आत्मा हो, लेकिन वो आपका घर है। ठीक है, समय हो रहा है और लास्ट कर्मातीत बनना है ना, तो कर्म का प्रभाव मुझे खींचे नहीं। कर्म का संबंध हमारा देहधारियों से होता है, चीजों से होता है, तो मेरे को उससे अतीत होना है, कर्म तो करना है। ये थोड़ा मैं बात करना छोड़ दूंगी, खाना पकाना छोड़ दूंगी, आप पैसा कमाना छोड़ दोगे, कुछ भी बाबा ने छोड़ने के लिए इस रीति से नहीं कहा। ड्यूटी आपको पूरी करनी है, लेकिन जो मैं कर रही हूं, जो मैं जिम्मेवारी निभा रही हूं, कहीं पर भी हूं, चाहे सेंटर पर हूं या घर पे हूं या ऑफिस में हूं, उसके प्रभाव से मैं डिटैच हूं। मुझे कर्म की कॉन्शियस नहीं रहे, कर्म किया, लेन देन किया, बातचीत की, सब कुछ किया, लेकिन उतना ही मैं न्यारी हो जाऊं, फिर बार बार उस चिंतन में नहीं जाऊं, देखो ना ऐसे हुआ, देखो ना ये हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, अच्छा हुआ तो बड़ी मैं खुश हो जाऊं, कभी निराश हूं, कभी खुश हूं, कभी उदास हूं, कभी गमगीन, नो। तो कर्मातीत की तो और भी बड़ी, हाँ आप सुनते रहते हो टाइम टू टाइम, बड़ी गहरी परिभाषा है कि संबंधों से, वस्तु पदार्थ से डिटैच होके कर्म करना, और उसमें जितना हमारा बाबा से गहरा संबंध होगा। क्यों दादियां बार बार हमें पक्का कराती हैं, बड़े सिंपल शब्दों में कहती हैं मीठा बाबा, और हम सब खुशी में नाचते हैं, मीठा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा कहते हो ना सब। अब ये सिर्फ मुख से कहने की बात नहीं है, ये हमारी फीलिंग्स है अंदर की। तो मैं उस संबंध में कितनी गहरी समाई हुई हूं, उसका ही प्रभाव मेरी कर्मातीत अवस्था बनती है कि मैं और संबंधों से डिटैच होती जाऊं। इतना मैं ईश्वरीय संबंध में समाई रहूं कि मुझे दैहिक संबंध खींचे नहीं, तो मैं कर्मातीत बनती हूं और ये है मेरी तैयारी। ठीक है, ओम शांति। क्योंकि टाइम मिला हुआ हमें 11:30 का, हाँ नेक्स्ट क्लास भी है ना आपका फिर, हाँ अच्छा कोई बात। तो कर्मातीत के लिए ब्रह्मा बाप ने देखो कर्मातीत बन गए ना, हाँ लास्ट तक बाबा ने बच्चों को चिट्ठियों के जवाब दिए, जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। नहीं तो बाबा को पता ही था, अंदर से महसूसता थी ही, बाबा सोचते कल कर लेंगे या और कहीं दे देंगे, अब मैं बच्चों से इतना तो सब कुछ दे चुका हूं, इतनी पालना कर चुका हूं। लेकिन बाबा ने जिम्मेवारी पूरी निभाई। तो हम अपनी सेवा की, अपनी जिम्मेदारी जो भी जिसकी है, पर उसमें मैं न्यारी कितनी बनती जा रही हूं। इस पर एक बार बाबा की मुरली चली थी कि जब हलवा पकाते हैं तो धीरे धीरे उसके पकने की निशानी क्या होती है, कढ़ाई छोड़ता जाता है। तो मैं आत्मा अपने को अंदर से इतनी परिपक्व, इतनी स्ट्रांग, इतनी शक्तियों से भरपूर करती जाऊं कि किनारे छूटते जा रहे हैं। माना जहां भी मैं हूं मेरा कहीं कोई लगाव नहीं। किनारे छूटना माना जहां भी जिनके भी संपर्क में मैं आती हूँ, 100 के आती हूँ, 1000 के आती हूँ, 5 के आती हूँ, लेकिन आ रही हूँ। हलवा पड़ा तो कढ़ाई में ही है ना, पर चिपका हुआ नहीं है। आऊं संपर्क में, कर्म करूं, लेकिन मेरी बुद्धि कहीं भी फंसी हुई नहीं है, कहीं भी फंसी हुई। जैसे कई कहते हैं ना, नहीं मैं सेवा इसके साथ करूं तो मुझे अच्छा लगता है, उसके साथ करूं तो नहीं अच्छा लगता, ये बेटा होता है तो ठीक लगता है, वो बेटा आता है भले वो कलेश करता होगा लेकिन मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं आए, मेरे अनुसार ऐसा होता है तो अच्छा होता ही, राइट है, ये अच्छा ही होता है, लेकिन मैं उस अच्छे के होते या बुरे के होते भी दोनों में हूं, भले मुझे उससे सुख भी मिल रहा है लेकिन फिर भी मैं न्यारी। इतनी अंदर सूक्ष्मता आत्मा की स्ट्रांग होने से होती जाएगी। ठीक है, तो ऐसे अपने अंदर बाबा की याद से उस संबंध, ईश्वरीय संबंध की प्राप्ति की गहराई में जाओ और शक्तियों को आत्मा के अंदर भरते जाओ तो किनारे ढीले होते जाएंगे। आत्मा जब भरपूर स्ट्रांग हो जाती है तो फिर कोई बात उसको खींच नहीं सकती अपनी तरफ। ओम शांति।
Be mine।